जगत जननी भगवत स्वरूपा भागवती श्री राधिका का आज जन्मोत्सव है। ये जगत जननी, ये भगवती श्री कृष्ण चित्र आकर्षणी राधिका एक विलक्षण पहेली है सबके लिए। राधा तत्व क्या है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है सबके लिए। वैसे तो भगवान का कोई भी अवतार होता है विष्णु तत्व, तो वो अवतरण को समझना ही एक बहुत विशेष कृपा हो तो समझ सकते हैं। जब एक भगवान के अवतार को समझना कठिन है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सत्वगुण जनित देह होता है भगवान का, सत्वगुण से निर्मित होता है, तो ये समझना ही कठिन है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो इससे भी रहस्यमय अवतरण होता है भगवान श्री कृष्ण का। जब अन्य भगवान अवतरित होते हैं तुरंत स्वयं रूप में आ जाते हैं, और जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो चतुर्भुज होते हैं, फिर बालक बन जाते हैं, फिर मुरली वदन करते हैं, तो ये भी समझ नहीं आता। ये उससे भी गूढ़ तत्व है, अन्य अवतारों से भी। जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं इस अवतरण को समझना इतना आसान नहीं है। इससे भी निगूढ़ तत्व जो वेदों में भी बहुत ही छुपे रूप से वर्णित है, राधा तत्व, श्रीमती राधिका का आविर्भाव, ये सबसे निगूढ़ है। भगवान का अवतरण ही बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट के द्वारा समझा नहीं जा सकता। त्रिकाल में कब नहीं समझा जा सकता? त्रिकाल, त्रिकाल होता है भूत वर्तमान और भविष्य। त्रिकाल में नहीं समझा जा सकता भगवान के अवतरण को बुद्धि से। कृष्ण के अवतरण उससे भी परे है, बुद्धि वहां तो पहुंच ही नहीं सकती, और उससे भी ऊंचा अवतरण श्रीमती राधा का अवतरण, वहां तक तो बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती है। ये केवल और एकमात्र केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। भगवत कृपा से ही भगवत भगवान का, भगवती का, राधा भगवती है, भगवती का अवतरण समझा जा सकता है। आज हम बताएंगे या बता रहे हैं या बताया है, वक्ता एक है पर सबको अलग अलग प्रकार से समझ आएगा, सबकी अपनी योग्यता के अनुसार। ये योग्यता क्या होती है? ये होता है सेवा भावना, चित्त शुद्धि। शास्त्रों में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम इंद्रियो सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फूरते अदः। इसका मतलब है अतः श्री कृष्ण नाम आदि, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम है, राधा है, उनकी लीला है, उनके परिकर है, अतः श्री कृष्ण नाम ना भवे ग्रहण इंद्रियो, ये बुद्धि से इंद्रियों से समझ नहीं आता। सेवन मुख ही जीवादो, ये केवल सेवा भावना के द्वारा ही समझ आता है। तो जितने भक्त बैठे हैं सबकी सेवा भावना अलग है, तो सबको बोले कथा एक है, समझ अलग अलग प्रकार से आएगी। ये है भगवान। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो किसी को साक्षात कामदेव लगते हैं, किसी को साक्षात यम रूप लगते हैं, किसी को ग्वाला लगते हैं, किसी को राजा लगते हैं, किसी को बालक लगते हैं, उसी प्रकार से भगवती कथा है। ये सबको अलग अलग प्रकार से दिखाई देगी, सुनाई देगी, आश्चर्य देगी, जब आत्मा ही आश्चर्य होगा तो भगवान कितना अचिंत्य आश्चर्य स्वरूप होंगे। उनकी कथा, उनका अवतरण गूढ़ अति गूढ़, राधा अवतरण गूढ़ परम निगूढ़ तत्व राधा। लक्ष्मी नारायण की उपासना कोई करे, विग्रह की सेवा करे, उनसे पूछे ये कौन है, बोले लक्ष्मी है, ये कौन है, उनके पति नारायण है, कोई समस्या नहीं लगती। बोले ये आप किसकी उपासना करते हो, हम राधा कृष्ण की, ये राधा ये इनकी वाइफ है तो परिणत है, परिणत समझते हैं, परिणति है, नहीं परिणति तो नहीं है, परिणति नहीं है तो क्या है, ये रमणी है, रमन करती है श्री कृष्ण के साथ, अब इनकी उपासना करते हो। अच्छा अच्छा, जो राधा कृष्ण कई भी पीछे सात आठ आठ स्त्रियां हैं, ये कौन है, ये उनकी अष्ट सखी है, अष्ट सखी कौन है, ये ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुम जसुदेवी। अच्छा ये राधा के बारे में कुछ बताएंगे, हाँ ये राधा है, ये श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार करती हैं, विवाहित नहीं है, इनका एक पति भी है, उनका नाम अभिमन्यु है, विसास जटिला और कोटिला इनकी ब्रदर्स सिस्टर। अच्छा तो ये जो आठ है, जो ललिता विशाखा ये भी सब मैरिड है, इनके पतियों के नाम इस प्रकार है। अच्छा आप इनकी उपासना करते हो, ये आपके भगवान है और ये सारी मैरिड वुमेन है और ये इनके साथ विहार करते हैं, कब कब करते हैं, रोज रात को दोपहर को सुबह हर समय, और आप इनकी उपासना करते हैं। अच्छा आप क्या करना चाहते हो उपासना करके, हम ये जो ललिता विशाखा राधा के साथ विहार करते हैं उसमें इनको मदद करना चाहते हैं। आप तो अजीब, आपके भगवान तो अजीब है और आप उससे भी ज्यादा अजीब हो, कितना गूढ़ तत्व है, पहेली नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, बुद्धि के स्तर पर विलक्षण पहेली। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, जब तक राधा कृष्ण का तत्व समझ नहीं आएगा राधा रानी पहेली बनी रहेंगी और हम सही रूप से उनकी उपासना कर भी नहीं पाएंगे, चाहे हमारी दीक्षा कहीं भी हुई हो। राधा कृष्ण एक हैं, दो नहीं हैं, जैसे यहां पे पुरुष और स्त्री कितने होते हैं, दो, यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है, राधा कृष्ण एक है, दो नहीं है, लीला के ये अपने आप को दो स्वरूपों में प्रकट किया हुआ है, राधा और कृष्ण के रूप में, परंतु हैं एक। बिना इस बात को समझे कभी राधा कृष्ण तत्व समझ नहीं आएगा, कभी ब्रज समझ नहीं आएगा, कभी मैं क्या हूं तब कुछ समझ नहीं आएगा, ये संसार क्या है ये भी समझ नहीं आएगा। श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, गॉड फुलेस्ट गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, फुलेस्ट गॉड की फुलेस्ट पावर शक्ति क्या है, श्री राधा। ये शक्ति क्या करती है, ये शक्ति का कार्य है, राधा का कार्य है, जब ये अमूर्त रूप में होती है, मतलब विग्रह धारण करी हुई, जब इनका हम नहीं सोचे तो ये अमूर्त रूप में श्री कृष्ण को स्वरूपानंद देती है, श्री कृष्ण अपने स्वरूप में ही दिव्यानंद का भोग करते हैं, और समूर्त जब होती है, जब मूर्तिमान विग्रह होती है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, जब दुई देह हो जाता है तो श्री कृष्ण को हर प्रकार से आनंद देने का, श्री कृष्ण के सुख विधान का कार्य कौन करती है? राधा। राधा रानी का स्वरूप लक्षण ही यही है, गोपियों का स्वरूप लक्षण ही यही है। क्या है? श्री कृष्ण का सुख विधान करना। ये पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, हलादिनी शक्ति, अहलादिनी शक्ति राधा ही कायव्यू रूप से, अपने कायव्यू रूप से अनंत मूर्तियां धारण करती हैं, सखी मंजरियों के रूप में और रसराज श्री कृष्ण को आनंद देती है। समझ आ रहा है? एक आत्मा दुई देहधरी राधा। अब ये राधा की ही लाखों करोड़ों अरबों वृत्तियां ही मूर्तिमान होके सखी मंजरियों के रूप में बनी हुई। ध्यान दें, एक कृष्ण, ठीक है, अब कृष्ण राधा, अब ये राधा लाखों करोड़ों इनकी वृत्तियां मूर्तिमान रूप धारण करती है, तो ये दंत विशाखा रूप गति आदि मंजरी बन जाते हैं और क्या करते हैं? श्री कृष्ण का सुख विधान करते हैं, सुख वर्धन करते हैं। असली में ये कौन है ललिता विशाखा रूप गति मंजरी? है श्री कृष्ण ही। कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण राधा है और राधा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण श्री राधा में भेद नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमारे मन में या किसी के मन में आता है कि भेद है, तो उसके लिए शास्त्र क्या कहते हैं? ध्यान दे देते हैं थोड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, आवयोर बुद्धि भेदम च यह करोति नराधमः। जो राधा कृष्ण में नराधम, नराधम समझते हैं नर और अधम, जो मनुष्य में सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है वो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है कि ये दो है। अच्छा, करते तो क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है तस्य वासः, वो निवास करता है कहां पे? काल सूत्रे यावत चंद्र निवा करो। वो काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। कब तक? यावत चंद्र दिवा करो, मतलब जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक नरक में निवास करता है काल सूत्र नाम के, जो राधा और कृष्ण में भेद समय। ये एक है, दो नहीं है, समझे? दो नहीं है, एक है, और एक होते हुए भी नित्य दो है लीला के लिए, रस निष्पत्ति के लिए। साम रहस्योपनिषद क्या कहता है? अनादि एवं पुरुष एव एवास्ति तदेव रूपं द्विधा विधाय समाराध्यं तत्परोभूत तस्मा ताम राधो रसिकानंदो भेद विदो वदन्ति। वे अनादि पुरुष एक ही हैं कृष्ण, अनादि काल से अपने आप को दो रूपों में किए हुए हैं और अपनी आराधना के लिए तत्पर हैं। श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं और राधा श्री कृष्ण की, दोनों राधा कृष्ण भेद नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। कृष्ण आराध्या भी है और कृष्ण आराध्य भी है। इसलिए अपने आप को दो रूपों में करने की वजह से वेदज्ञ पुरुष राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। रसिक आनंद रूपा, रसिक को आनंद प्रदान करने स्वरूप, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाले का मूर्तमान स्वरूप क्या है? श्री राधा। राधा तापनोपनिषद बताते हैं ये यम राधा यश्च कृष्णो रसादि देहर अश्चेक क्रीड़ानार्थम द्विधा भूतः। ये जो राधा और ये जो कृष्ण रस के सागर हैं वो एक ही हैं, क्रीड़ानार्थम द्विधा भूतः, ये केवल खेल के लिए दो बने हुए हैं, एक याद रखिएगा। ब्रह्मांड पुराण क्या कहता है? राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम। राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण हूं, राधा की आत्मा मैं श्री कृष्ण हूं और मेरी आत्मा निश्चय राधा है। आपने कभी सुना है कि हमारे एक देह के अंदर आत्मा है और जो आत्मा उसके अंदर वो देह आत्मा है, ये राधा कृष्ण गूढ़ तत्व है। राधा श्री कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण श्री राधा की। वृंदावनेश्वरी राधा आराधे आराधते मया। देखिये जो अभी हम बोल रहे थे कि कृष्ण की आराधना राधा करते हैं, राधा की कृष्ण, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावन की ईश्वरीय राधा, राधे आराधता मया, इसलिए मैं उनकी भी आराधना करता हूं। ईश्वरीय तो आराधना तो करेंगे। एक बार नारद मुनि जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो गोकुल पधारे, श्री कृष्ण दर्शन करके उनके मन में आया कि श्री कृष्ण प्रकट हैं तो निश्चय उनकी कांता रूपी वह देवी भी प्रकट होंगी, जब जहां नारायण है वहां लक्ष्मी भी होंगी। तो ये सब जो भगवत विग्रह होते हैं, ये दिव्य सच्चिदानंदमय विग्रह होते हैं और इनकी दिव्य सच्चिदानंदमय राधा शक्ति स्वरूपा इनके साथ हमेशा होती है, ठीक है। जैसे कि नारायण के साथ लक्ष्मी, राम के साथ सीता, ये सच्चिदानंदमय परमात्मा परात्पर तत्व जो है इनकी कंसोर्ट हमेशा साथ होती है। तो नारद को ये लगा कि श्री कृष्ण अवतरित हैं तो जो भागवती भी अवतरित होंगी, तो क्यों ना मैं जाके खोजूं कि भागवती कौन है, कहां है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। तो नारद मुनि सबके घर जा जाके ब्रह्मवासियों का ये देखने लगे कि क्या यहां पे दिव्य कन्या उत्पन्न हुई है। तो जहां भी जाते नारद मुनि उनकी विष्णुवत पूजा होती, विष्णु बुद्धि से पूजा होती, ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट बताया गया। जिनको शिष्टाचार मालूम है, जिनको वास्तव में भक्ति मालूम है, वो वैष्णव का सत्कार कैसे करते हैं, जैसे विष्णु का सत्कार किया जाता है। वैष्णवानाम विष्णुवत पूज्य, वैष्णवानाम विष्णुवत पूज्य, वैष्णव की पूजा विष्णु के समान करनी चाहिए। उसी प्रकार से अन्य ग्रंथों में आता है वैष्णवानाम उपासनाम आचार्य नाम विशेषतः, कि वैष्णवों की उपासना अच्छी तरीके से करनी चाहिए, आचार्यों की और विशेष तरीके से करनी चाहिए। आचार्य नाम विशेषतः, वैष्णवानाम पराम बुद्धि आचार्य नाम विशेषतः, वैष्णव में पराम बुद्धि बहुत सतर्क रह के उपासना करनी चाहिए। यह हमें अपने अपने जीवन में देखना होगा कि हम वैष्णव को किस प्रकार से लेते हैं, विष्णुवत लेते हैं कि साक्षात विष्णु आए। और आचार्य नाम अगर आचार्य स्वरूप हो कोई तो आचार्य नाम विशेषतः विशेष उपासना करनी। नारद मुनि जिस भी घर में जा रहे थे सब विष्णु बुद्धि से उनकी उपासना करते। फिर नारद मुनि एक बहुत विशाल भवन में गए, भानु महाराज का भवन, भानु दुलारी, वहां गए, उन्होंने भी विष्णु बुद्धि से पूजा करी, उपासना करी। नारद ने बोला कि आपकी यहां कोई दिव्य कन्या या कुछ पुत्र उत्पन्न हुए हैं क्या? तो भानु ने सोचा कि आशीर्वाद, नारद मुनि जिन्हें परम भागवत आए हैं इनका आशीर्वाद दिलाए, तो श्रीराम आए, श्रीराम राधा के भ्राता ज्येष्ठ। तो नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि ने बोला इनको, भानु को, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपका ये जो पुत्र है ये आगे चलकर श्री कृष्ण और श्री बलराम का परम सखा बनेंगे। जो महात्मा होते हैं वो अपने दूरदृष्टि से देख सकते हैं भविष्य में क्या होना, देख के बता सकते हैं। नारद मुनि ने श्रीराम का बताया, भागवत का पहला स्कंद पढ़ेंगे तो परीक्षित महाराज के बारे में उनके जन्म लेते ही बता दिया गया, ये आज बहुत बड़े राजा बनेंगे और इनको अंत में तक्षक मारेगा, तो जन्म लेते ही सबको डिसाइड होता है, बड़ी घटना है। तो नारद मुनि ने उन्हें यह बताया। और फिर भानु ने सोचा, भानु ने बोला कि मेरी कन्या भी है, आप कृपया उनको भी आशीर्वाद दें। तो भानु लेके गए भीतर के कमरे में, वहां धरती पे एक दिव्य बालिका लौट रही है। तो नारद मुनि ने उस दिव्य बालिका को उठाया और उठाते ही चित बेवल हो गया, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। और बहुत समय तक स्तब्ध रह गए नारद मुनि, एकदम निश्चेष पत्थर की तरह। इतना रूप माधुर्य, इतना सौंदर्य एक बालिका का नारद मुनि देख रहे हैं। काफी समय बाद जब वो उठे तो बहुत धीरे धीरे आंखें खोल के बस उनको निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो स्वच्छंद विहार करता हूं। नारद मुनि तो कहीं नहीं चले जाते, कोई भी लोक में चले जाते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि मैं तो गिरिराज कुमारी के दर्शन भी करे हैं। गिरिराज कुमारी कौन? उमा। तो वो तो इनके सौंदर्य का कभी सौंदर्य को छू भी नहीं सकती राधा के। मैंने लक्ष्मी के और अन्य देवियों के भी दर्शन करे हैं तो वो तो राधा की छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकते। नारद मुनि कहते हैं इतनी सुंदर बालिका। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं, हे भानु आप बाहर जाओ, मैं एकांत में स्तुति, उन्होंने मन में सोचा कि मैं एकांत में स्तुति करूंगा, और किसी कारण से भानु महाराज को बाहर भेज दिया अकेले कमरे में। अब कैसे बोले ये छोटे से बच्चे कि मैं स्तुति करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, कैसे बोले? वो आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो वो बाहर गए तो उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, उन्होंने आप जगत जननी है, आप से ही सृष्टि प्रलय और पालन होता है, विष्णु जो है छल से बालक रूप महाविष्णु धारण कर रहे हैं, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके अंश 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 का ही अंश है। जो दुर्गा है वो राधा रानी के कला के करोड़ों हिस्से का करोड़ों हिस्सा भी नहीं है, राधा रानी के कला के करोड़ों हिस्से का करोड़वा हिस्सा वो दुर्गा है। तो आपके मुख से दिख रहा है कि आप भीतर ही भीतर किसी दिव्य आनंद में रमण कर रही हैं और आप जो है मेरी बुद्धि के परे हैं, मेरी तर्क के परे हैं। नारद मुनि स्तुति कर रहे हैं, अनेक प्रकार की स्तुतियां थी। फिर नारद मुनि ने कहा कि हे राधे, आपका जब ये बालिका रूप ही इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना मनोहर, मन को हरने वाला है, तो जो आपका कुमार अवस्था में जिन जिससे श्री कृष्ण हमेशा मुग्ध रहते हैं, मोहित रहते हैं, वो कैसा होगा? मैं सोच सोच के विवल हो रहा हूं, आप कृपा करके मुझे उस रूप के दर्शन करें। बालिका को निवेदन कर रही राधिका, इसके बाद श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनती है, क्योंकि नारद मुनि तुरंत ये स्तुति करके श्री कृष्ण कीर्तन शुरू कर देते हैं, श्री कृष्ण का ध्यान शुरू कर देते हैं। और श्री कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते नारद मुनि को राधा रानी अपने दिव्य चतुर्दश वर्ष के जो उनका दिव्य रूप है उस रूप में दर्शन देते हैं। 14 वर्ष की आयु है राधा रानी की नित्य, उस रूप में, उस पूर्ण विकसित रूप में, पूर्ण सौंदर्य जिससे श्री कृष्ण नित्य निरंतर मुग्ध मोहित रहते हैं, उस रूप में राधा रानी नारद मुनि को दर्शन देते हैं। जैसे ही होता है चारों ओर से अन्य सखियां भी घेर के राधा रानी को खड़ी हो जाती हैं। राधानी के साथ अन्य सखियों का भी दर्शन प्राप्त हो जाता है नारद मुनि को। हम भी निवेदन करें हमें भी राधा, हम पे भी राधा रानी कृपा करें। सखी सहित नहीं, जुगल सरदार सखी सहित हमें दर्शन दें। जैसे ही दर्शन करते हैं राधा रानी के उस दिव्य रूप का, तो श्री नारद मुनि फिर से बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते हैं तो उनकी सखी थोड़ी देर बाद उनके चरण से जल लेके छींटा मारती है। छींटा मारते हैं तो वो होश में आते हैं, तो बोलती हैं कि आपकी बहुत ही आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये हमारी श्री राधा जो कि शिव ब्रह्मा के भी बुद्धि इंद्रियों के परे है, इन्होंने आज आपको साक्षात दर्शन दिए हैं। अब आपकी कोई बात संभव नहीं हो पाएगी राधा रानी से। अब आप क्या कर लो अपने कल्याण के लिए, श्रीमती राधा रानी की परिक्रमा करो, उनके चरणों में प्रणाम करो। जिनको आशीर्वाद दिलाने के लिए भानु महाराज आए हैं, उनकी सखी क्या बोल रही है, प्रणाम करो अपने कल्याण के लिए और परिक्रमाएं करो। तो परिक्रमाएं, अब ये तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। तो परिक्रमा करे, प्रणाम किया और भानु महाराज को बोल के गए कि इनका अच्छे से अच्छे रूप से इनका देखभाल करें। ये देवताओं की बुद्धि के भी परे हैं, देवता के वश में भी नहीं है। जहां पर ये रहेंगी साक्षात लक्ष्मी महान निवास रहेगा, नारायण वहीं रहेंगे, ये बोल के चले जाते हैं। तो हमने क्या बताया, राधा कृष्ण एक आत्मा सदा से एक है। जब अवतरित है तब भी वो एक होते हुए दो हैं। जब श्री कृष्ण होए तो श्री राधा भी हैं। आए यहां पे बालक रूप में हैं, परंतु हैं हमेशा अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित। राधा रानी क्या है, प्रेम स्वरूपा। प्रेम स्वरूपा क्या होता है, ये प्रेम क्या होता है, ये प्रेम बहुत ही पवित्र शब्द है। प्रेम पवित्र शब्द है, इस जगत का शब्द नहीं है, ना ही जगत के संबंधों के लिए है। पति पत्नी माता पिता ये सब संबंधों के, इस जगत के संबंधों के लिए प्रेम शब्द नहीं उपयुक्त होता। ये दिव्य जगत का शब्द है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि क्या बताते हैं, प्रेम अनिर्वचनीयम। प्रेम का स्वरूप क्या है, वो वचन के परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम का, प्रेम के स्वरूप का ही वर्णन नहीं, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया हो वो शब्द के परे है। प्रेम के अंदर इंद्रिय तृप्ति का कोई स्थान नहीं है, वासना सिद्धि का कोई स्थान नहीं है। किसी प्रकार की वासना सिद्धि इंद्रिय तृप्ति का, लालसा का कोई स्थान नहीं है। प्रेम में क्या होता है, अपने प्रेमास्पद को नित्य निरंतर सुख देना, केवल एक कार्य। अब बताइए इस संसार में कोई भी माता पिता सिर्फ क्या केवल अपने बच्चे के सुख के लिए कार्य करती है, अपने सुख के लिए बिल्कुल नहीं, थोड़ा उसका थोड़ा मेरा, 50-50 बिजनेस। हाँ, तो प्रेम शब्द उसमें प्रयोग नहीं होता। कोई पति है ऐसा जो सिर्फ अपनी पत्नी के सुख के लिए कार्य करता है, या कोई पत्नी ऐसी है जो केवल पति के सुख के लिए कार्य करते हैं, तो प्रेम शब्द यहां कहीं भी प्रयोग नहीं होता। प्रेम उस क्षेत्र में प्रयोग होता है जहां पे केवल अपने प्रेमास्पद के लिए दिन रात 24 घंटे 7 डेज अ वीक दिन रात उनकी प्रसन्नता के कार्य है। राधा रानी क्या है, प्रेम स्वरूपा है। इस संसार में रुचि आसक्ति भाव प्रेम, उसके बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मां भाव, ये प्रेम की उच्चतर कक्षाएं हैं। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मां भाव, और मां भाव सभी गोपियों में विद्यमान है, वो जो प्रेम की सबसे उच्चतम स्वरूप है महाभाव, उसकी साक्षात मूर्तिमान स्वरूपनी है राधा रानी। तो राधा रानी में प्रेम में ही काम का गंध नहीं होता, कामनाओं का गंध नहीं होता, तो महाभाव स्वरूपा में कामना का गंध कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं बात को, राधा कृष्ण समझते हैं लोग ये विलास कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण की इतनी सारी गोपियां, तुम्हारी भी होनी। अच्छा, तो श्री कृष्ण तो भगवान है, भगवान है तो क्या हुआ है। इस बड़े ध्यान से समझिएगा बातों को, इस संसार के लोग इस संसार से अनासक्त होना नहीं चाहते। क्यों नहीं होना चाहते हैं? इस संसार से अटैचमेंट बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गोलोक के इमोशनल डायनामिक्स को नहीं जानते। गोलोक के अंदर सारे इमोशंस अपने फुलेस्ट परफेक्शन एक्सप्रेशन पे हैं। सारे इमोशन इमोशन सारी भावनाएं अपने चरम सीमा चरम परिणति पे हैं गोलोक के अंदर। कि इस संसार के इमोशन को इसलिए नहीं त्यागना चाहते क्योंकि उस संसार के इमोशन को समझते नहीं है। उस संसार में भी ये सारे इस संसार में इमोशंस देख रहे हैं गोलोक में, वो सारे इमोशंस हैं सारी भावनाएं हैं। और ये संसार में जो सारी भावनाएं हैं उसके छाया रूप है, देखने में वैसी लगती हैं, है सब छाया, सब छाया रूप है। अब जैसे कौन सोच सकता है कि जो क्रोध है वो भी भक्ति का एक अंग हो सकता है? सोच सकते हैं? क्रोध, परंतु क्रोध भी भक्ति का एक अंग है। इसे कहते हैं रौद्र भक्ति रसम, भक्ति का अंग है क्रोध भी। तिरस्कार करना किसका? तिरस्कार अच्छी बात है, कोई करता है खुशी मिलती है किसी को, आपको तिरस्कार होता है, परंतु गोलोक के अंदर तिरस्कार रस है। क्रोध करना ये परफेक्शन में जो इमोशंस हैं क्रोध तिरस्कार, ये गोलोक में है और ये आनंद वर्धन करते हैं, इससे दुख नहीं होता। इस संसार में कोई हमारी बात माने तो सुख होता है, कोई बात ना माने तो दुख होता है। द्वंद्व है या द्वंद, या सुख है या दुख है, आनंद नहीं है। उस जगत में केवल आनंद है, सुख दुख है ही नहीं। तो चाहे क्रोध है या कोई भी इमोशन है, वो परफेक्शन के लेवल पे केवल आनंद वर्धन ही करता है। इस संसार में द्वंद्व है, गोलोक में नहीं है। वहां एक रूप एक रस, वहां ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण कुछ सोचा तो किसी ने क्रोध किया तो बात पूरी नहीं होगी, बात तो पूरी होगी होगी। क्यों? क्योंकि निश्चित शक्ति योग माया वो कार्य पूरा करवाएंगे। गोलोक के छाया है इन जगत। ललिता सखी राधा रानी को डांटती हैं, राधे मेरे को तो चलो छोड़ो, मैं जैसी भी हूं, मैं नर्क में जाऊंगी अपने कार्य को, उसे छोड़ो। तो तुम बताओ तुम्हारा बुद्धि मारी गई है, तो इस ग्वाले के साथ? ये ग्वाला हंस रहा है, मुझे पता है क्यों हंस रहा है, तुम्हें धोखा देने के बाद तुम्हें पता नहीं चला और ये जीत गई, यही खुशी में ये हंस रहा है, तो इसके साथ? तो राधा रानी के ऊपर क्रोध करनी है। कौन? स्वयं राधा रानी जो ललिता बनी है। सारी सखियां क्या है? कायरी रूपा। किसकी? राधा की। राधा कृष्ण क्या है? एक है। राधा कृष्ण ललिता भी शाखा रूपति आदि मंजूर। तो रस पुष्टि के लिए ही डांट पड़ रही है। एक बार राधा रानी वासक सज्जिका रूप में होती हैं, कुंज को अच्छी तरह सजा के बैठी होती हैं, वो पूरी रात्रि इंतजार करती रहती हैं कि अभी श्री कृष्ण आएंगे, मेरे प्राण बल्लभ आएंगे। और श्री कृष्ण आते हैं एकदम सुबह, और वो भी कैसे, ओठ कटे हुए हैं, यहाँ लाल लाल निशान है और कटा हुआ है कहीं से, कभी कहां कहां से कटा हुआ। और श्री कृष्ण के पास जैसे ही राधा रानी के पास आते हैं, राधा रानी क्या करती है? क्रोध। इसलिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है, पर अभी धीरे धीरे समझ आएगा कैसे। श्री एकदम माननीय हो जाती है, माननीय आ जाती है राधा रानी। मान्य तो जब ऐसे देखें चंद्रावली के कुंज से आए हैं विलास करके, सारे संभोग चिन्ह प्रकट है मुख पे ही, और निर्लज रूप से मुख धोके भी नहीं आए, सीधा ही उठ के आ गए हैं। तो श्री कृष्ण को बाहर निकाल देती हैं, तो श्री कृष्ण क्या होते हैं, श्री राधा ने की सखी मंजरी के चरणों में पड़ जाते हैं। हे सुरम्या, इसका नाम सुरम्या, वो ऐसे सोच सकता है, हे स्वर्ण तले, हे रत्न तले, हे शोभने। आज से तुम्हारी सखी राधा अकाल में मुझसे मानी हो गई है। क्या अकारण? अभी तुम अकारण बोल रहे हो? सारे संभव जिन तुम्हारे मुख पे विद्यमान है, तुम अभी बोल रहे हो अकारण? चले जाओ यहां से, एकदम दूर चले जाओ। राधा रानी की सखी ने भी मुझे तुम्हारे पास देख लिया ना, तो मेरी भी यहां पर खैर नहीं, यहां से चले जाओ, एकदम चले जाओ। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों में आ जाते हैं, मंजरी के चरणों में निवेदन करते हैं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, अपनी सहेली को मना लो, मैं सच बोल रहा हूं, मैं चंद्रावली के बस गया ही नहीं था, पता है रास्ते में क्या हुआ, रात भर में राधा रानी को ढूंढता था, इस वजह से मेरी आंखें लाल हो गई, जागे हैं किसी और वजह से, बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे जाता ढूंढता था, आंखें लाल हो गई, और ये जो कट गया ना, जंगल में ढूंढा था बार बार, कभी किसी पेड़ से कांटे से कट रहा, कभी किसी पेड़ के कांटे से कट रहा, और जो होट कट गए हैं, एक्चुअल में रात को ठंडी हवा चलती है, शीतल हवा, उस वजह से जो है वो कट फट गए। राधा रानी की पिंकरी ने बोला, हम राधा रानी की मंजरियां हैं, परम सुचतुरा है, हमें बनाना इतना आसान नहीं है। तो श्री कृष्ण मंजरियों के चरणों में जिसे कहते हैं निवेदन बारम्बार कर रहे हैं, और किनके चरणों में, श्री कृष्ण जो परम भगवान परमात्मा है सबके हृदय में, जिनकी युगों युगों तक आराधना करने के बाद उनकी चरण रज भी प्राप्त नहीं होती ऋषि मुनियों को, वो श्री कृष्ण मंजरी मंजरी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, और मंजरी क्या कर रही है, उनका देखिए क्रोध, क्रोध की सेवा, वंदे तो चली गई मंजरी, और राधा रानी के पास आगे बोली, हे राधे, हे प्रणानी, ये ब्रजराज मंडल मुझे वैसे ही परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे को परेशान करने के लिए मेरी बार बार मेरे निवेदन कर रहे हैं, इन्हें बोलो मुझे और उद्वेग ना करें। ये है मंजरियों का स्टैंड। पर आप पर भगवान श्री कृष्ण को चरणों में आने के बाद जो भी तिरस्कार कर देती है और क्रोध कर देती है, क्यों करती है, क्योंकि ये श्री कृष्ण को प्रिय है। कैसे प्रिय है, किंकरियां परम सुचतुरा है, उन्होंने पहला शब्द बोला हे प्रणयनी, इसका मतलब है कि तुम राधा रानी की, तुम श्री कृष्ण की अभिन्न अंश हो, एक ही अंग स्वरूपा हो, दो ही आत्मा, एक आत्मा दो ग्रह करी, तो कितने देर तक ये चलेगा, बस करो और देखो, ये बार बार मेरे चरणों में पड़े, कौन है, एक ही शब्द पर ध्यान दें, ब्रजराज नंदन, जो ब्रज के राजा हैं उनके बेटे हैं ये, जिन मेरे चरणों में पड़े हैं, तो राजा रानी का मान के अक्षुण रहते हैं, कार्य ने पूरा कर दिया, ये दक्षता है राजा रानी की मंजरियों की। राधा रानी की
जय।
तो इस तिरस्कार रस से श्री कृष्ण को आस्वादन भी हुआ, कार्य भी पूरा हुआ, और क्रोध भी किया। तो जो क्रोध है, तिरस्कार है, ये श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। जब राधा रानी मानवी होती हैं, तो श्री कृष्ण इंजॉयज अ ब्यूटी ऑन द फेस ऑफ राधा रानी बिकॉज ऑफ क्रोध, बिकॉज ऑफ एंगर। राधा रानी के मुख कमल पे जो सौंदर्य होता है उसका भोग करते हैं श्री कृष्ण जब राधा रानी क्रोध में होती है। यहां में से कोई पति बोल सकता है कि जो मेरी पत्नी बहुत क्रोधी होती है तो आई एंजॉय द ब्यूटी ऑन हर फेस, बट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोई बोल पाता है, कोई सोचता है, दुर्गा स्वरूप लगती है वहां का जो क्रोध है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। भक्त के मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय सब श्री कृष्ण संबंधित होते हैं। कार्य कोई भी करें, क्रोध करें, तिरस्कार करें, चुंबन करें, आलिंगन करें, कुछ भी करें, वो आनंद से जुड़ी है, आनंद वर्धन ही होगा। बस यहां पे क्रोध जो होता है किस किस गुण के अंदर आता है, रजोगुण और तमोगुण में। वहां का जो क्रोध है रजोतमोहन की वजह से नहीं है। मंजरी या राजा इसलिए क्रोध नहीं करेगी वह दुखी है, वो इसलिए क्रोध करिए कि जब ऐसे लगेंगे तो श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा। वहां जीते ही भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए है सब जीवन ही धारण इसलिए किया हुआ है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो इसलिए प्राण नहीं त्याग रही, यदि मैंने प्राण त्यागे श्री कृष्ण वापस आए मुझे देखा मैं नहीं हूं तो श्री कृष्ण दुखी होंगे, इसलिए मुझे जिंदा रहना है। ये है प्रेम का स्वरूप। और सारी सखी मंजे राजा रानी क्या है, काय के रूप सब श्री कृष्ण के आनंद वर्धन क्या है। सखी मंजरियां राधा रानी की अंतरंग लाखों करोड़ों वृत्तियां इमोशंस मूर्तिमान स्वरूप में है बस। तो श्री कृष्ण किसी भी स्त्री के साथ रमण नहीं करे पढ़ाई स्त्री का, क्योंकि उनके लिए तो पढ़ाया है ही नहीं, वो खुद ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज कृष्णा एनर्जी। हमें सोचते हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे हैं, तुम किसी और की पत्नी के साथ रमण कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी कृष्ण की पत्नी है वास्तव में। एकल पुरुष कृष्ण आर सब भृत्य सब प्रकृति हैं, तुम भी प्रकृति हो तुम्हारी पत्नी भी प्रकृति है, तो हम सबके पति कृष्ण हैं। आपकी पत्नियां आप पे क्रोध करती हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरी पत्नी मेरी भक्ति इज डूइंग डिवोशनल सर्विस टू मी बाय शोइंग एंगर, बोल सकते हैं माई वाइफ इज डूइंग डिवोशनल सर्विस टू मी बाय शोइंग एंगर, नहीं तो श्री कृष्ण बोल सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। दिस प्रूव्स कि सामान्य व्यक्ति भगवान नहीं है, क्योंकि वो ये बोल नहीं सकता कि मेरी पत्नी या मेरी बिलावेट मेरे को डांट के मेरी भक्ति कर रही है, तुम्हारा तिरस्कार कर रही है। एक ही पुरुषोत्तम है, बाकी सब प्रकृति है। जो आज भी हम बता रहे हैं ये राधा रानी क्या है, उस प्रेम माधुर्य का अनंत अगाध असीम महासिंधु महासिंधु है। आज हम उसकी एक तरंग के एक सीकर मात्र जितना भी वर्णन करना है, एक सीकर मात्र है बस। ये है राधा रानी, और ये जो प्रेम की राधा रानी की जो भाव तरंग है, उनकी एक भाव तरंग में हम अनंत काल से वास कर सकते हैं और हर्षित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव तरंग महाभाव से आई है, सारी भाव तरंगें अपने आप में असीम आनंद से उत्पन्न है। श्री कृष्ण संबंधित कुछ भी है वो आनंदमय है हमेशा। और राधा रानी प्रेम की स्वरूपा है, पर फिर भी हमेशा क्या समझती है, मुझमें तो प्रेम ना है ना था ना होगा, ये समझती है राधा रानी। ये प्रेम का स्वरूप है। जिनमें वास्तव में प्रेम होता है, जिन संतों में भी, वो कभी नहीं सोचते कि उनमें प्रेम है, और जिनमें नहीं होता वो हमेशा समझते हैं उनमें कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो गलत सब सब ठीक है, इससे पता चलता है कि प्रेम नहीं है। क्योंकि जिस पर प्रेम है वो बोले कि हाँ मैं सबसे गंदा हूं, मुझसे गंदा कोई भी नहीं। राधा रानी प्रेम स्वरूप है, वो ये बोलती है। एक अपनी सखी देवी बोलती है, सखी एक बात बताऊं सुन, असली में ना मेरे में कोई गुण तो है ही नहीं, ना गुण था मेरे में ना मेरा कोई रूप अच्छा है, पर ये जो नागर है ना श्री कृष्ण, ये ना मोह विवश हो गए हैं, मोह में आ गए हैं। हर समय मेरे को बोलते हैं मेरे प्राणेश्वरी मेरी हृदयेश्वरी तुम मेरी सब कुछ हो, हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। मैं उनको समझाती हूं बार बार कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और फिर भी क्या करते हैं और छोड़ने के बजाय मुझे आलिंगित कर लेते हैं और प्रेम करते हैं। तो मैं तो इस उनको अपनी एक एक सखी का नाम लेके भी बताती हूं, देखो ये सखी कितनी सुंदर है, कितनी गुण है इनमें, तुम इनके साथ विलास करो, मैं ठीक नहीं हूं। तो मैं तुमको तो पता है मैं कितनी बोलती हूं, बोलती रहती हूं, मैं कभी बोलती रहती हूं, हृदय मेरा कितना गंदा है, नाम देखने में गोरी हूं अंदर काली हूं, ऐसे बोलती है, वास्तव में ऐसे बोलती है राधा रानी। देखने में बाहर से गोरी हूं मैं, अंदर में परम काली हूं, एक भी गुण मुझमें नहीं है, न लज्जा न शील न धैर्य। और मैं तो श्री कृष्ण को बार बार बोलती हूं, श्री कृष्ण देखो ये सखी कितनी अच्छी है, ये देखो रूप कितनी अच्छी है ललिता के, इनका संग करो, ये तुम्हारे योग्य है वास्तव में। तो वो क्या करते हैं, तब भी सबसे अधिक मेरे प्यार, ये बात ठीक है बोलना, सबसे अधिक प्यार नहीं, तब भी अपना सारा प्यार मुझे करते हैं। हम अगर सोचें कि हम सबसे अधिक प्यार भी भगवान को करते हैं जो कि हम नहीं करते, वो भी कितनी शर्मनाक बात है। हमारी थाली मान लीजिए है, भगवान इसमें आपकी थाली में बैठने की 5% जगह, बाकी मैंने और पति भाई बच्चों को दिखा दिया। कृष्ण क्या, राधारानी क्या बोल रही है, कृष्ण मुझे पूर्ण रूप से प्यार करते हैं, सबसे अधिक भी प्यार नहीं करते, ये भी नहीं कि हाँ मेरे पापा मुझे सबसे चाहते हैं, बच्चे से मैं खुश हो जाते हैं, औरों को चाहते रहे कुछ नहीं। पर प्यार का मतलब यह कि वो एक पे केंद्रित होता है, जो विभक्त है वो प्यार होता ही नहीं, प्रेम नहीं होता। और राधा रानी कहती है मैं तो देवताओं की भी प्रार्थना करती हूं, मन्नतें करती रहती हूं कि श्री कृष्ण की बुद्धि ठीक करो, इनका मोह को भंग करो, इनको सही संग दो, संग दोष हो रहा है इनको, और अब मैं बहुत खुश हूं, अभी मुझको छोड़ के मथुरा चले गए हैं और मथुरा में इनको अन्य रमणियां मिल गई हैं, उनके साथ आनंद भोग करें, अब मेरे को वास्तव में आनंद मिला। ये है प्रेम का स्वरूप, केवल अपने प्रेमास्पद का आनंद देखना। आप सोच रहे हैं हम, हमारा कोई गिलावट किसी और देख गिरे तो हमें गुस्सा चढ़ता है, भक्ति में ज्यादा रुझान हो जाए तो ही हमें गुस्सा चढ़ता है, हमें सोचते हैं हमारे गिलावट का आनंद मुझ पर निर्भर होना चाहिए। तो ऐसे खुश हूं तुम तो ज्यादा हूं, तुम कहते हो प्रेम, प्रेम तो उनकी प्रसन्नता के लिए होता है भाई। राधा रानी सोची इसको कहते हैं प्रेम, वो खुद चाहती है एक तुम इनके साथ भ्रमण करो, मैं योग्य नहीं हूं तुम्हारा। और ये राधारानी वो राधारानी बोल रही हैं जिनके बारे में एक बार एक सखी श्री कृष्ण को बोलती हैं, श्री कृष्ण तुम्हें मालूम है तुम्हारे अदर्शन से, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए राधा रानी को अभी, तो राधा रानी की क्या हालत है इस समय, रो रो के यमुना का पानी दुगना हो गया है। राधा रानी की रोने से ये मजाक नहीं है, कागज चतुराई नहीं है, ये रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, रूप मंजरी रो रो के यमुना का पानी दुगना हो गया। और राधा रानी एकदम किस बात से, दर्शन नहीं हुए कृष्ण के, और राधा रानी एकदम पीली हो गई है, वाणी ही नहीं निकल रही, शब्द स्वर भंग होता जा रहा है, बोल ही कुछ नहीं पा रही राधा रानी, एकदम पीली पड़ी हुई है, और जैसे केले का पेड़ एकदम से गिर जाता है जमीन पे, बिल्कुल वैसे निश्चेष पड़ी हुई है स्तब्ध। किस बात से, श्री कृष्ण के दर्शन में। जब मध्यान्ह लीला होती है राधा कुंड से, जब श्री कृष्ण नित्य लीला में 3:36 बजे जब राधा रानी घर जाती हैं, 3:36 से 6, तो जब राधा रानी जब लेटी होती है तो उनका शरीर इतना गर्म हो जाता है श्री कृष्ण के गिरे से, ज्वाला से इतना गर्म हो जाता है कि जिन मंत्रियों की सेवा है चंदन की, वो चंदन लगाती है, चंदन तुरंत गर्म चीज के वो चंदन लगाओ क्या होगा, एकदम सूट के बाद वैसे चंदन एकदम सुहा उठ जाओ। ये श्री कृष्ण दर्शन अभी तो करे थे 3:36 में, और 3:40 में फिर से बुरी हालत हो जाती है। ये राधा जो श्री कृष्ण के दर्शन के बिना श्वास नहीं ले सकती, जीवन धारण नहीं कर सकती, ये राधा चाहती है श्री कृष्ण अन्य रमणियों के साथ रमन करें। क्यों? क्योंकि इससे श्री कृष्ण को खुशी मिलेगी। अपने सुख का सर्वथा अभाव होना, ये राधा का स्वरूप है। अपने लिए कदापि कुछ नहीं, मन वाणी बुद्धि से जो चेष्टाएं होनी है वो सब श्री कृष्ण के लिए हो, यही ये हमें, अगर हम वास्तव में प्रेम मार्गी हैं तो हमें राधा रानी से यही प्रार्थना करनी है कि हमारे मन बुद्धि वाणी से जो चेष्टाएं हों वो उनकी प्रसन्नता के लिए। हम तो कई बार बिजनेस लाइफ और फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल अलग मानते हैं, ये जो वास्तविक भक्ति के दर्शन कर चुके हैं, जिन्हें कुछ अनुभव है, वो कभी ऐसी बात नहीं सोचेंगे। भक्ति केवल एक ही लाइफ होती है स्पिरिचुअल में, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, ये सब अलग है, ऐसा नहीं। हम प्रेम मार्ग है ना, तो प्रेम में तो प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच तीसरे का तो स्थान ही नहीं है कभी भी। मैं और उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अब ये जो श्री कृष्ण है, इनकी श्रृंगार रस से उपासना की जाती है, तो सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं पाएगा कि ये राधा कौन है। ये तो केवल जो भी हमने बातें सुनी समझी है, ये केवल भक्तों के लिए है, वो भी जो बहुत लंबे समय से कुछ सुन चुके हैं, उन्हें आज कुछ सुनकर समझ आएगा। नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक आत्मा जो इधर धरी काया जो रूपा, वो पत्नी नहीं है, सब वही है, वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समझ में कुछ नहीं है। इतना गूढ़ तत्व है। जैसे पुजारी होता है मंदिर का, वो सारी की सारी पूजा की जो चीजें होती हैं, अगरबत्ती का थाली, उन सबको क्या करता है, अच्छी तरह से मांझ के सजा के रखता है, किस लिए, उनकी उपासना के लिए। एक उसी प्रकार से गोपियां अपने ध्येय को पूजा का उपकरण समझती हैं, श्री कृष्ण की उपासना के, इसलिए अपने ध्येय को वो सजाती हैं, नहाती हैं, कपड़े डालती हैं, अपने केश सजाती हैं, वेणी बनाती हैं, पुष्प डालती हैं, हाँ खाना खाती हैं, इसलिए थाली को सजा रही है, सेवा को उपकरण को। किस पुजारी का क्या करता है, पुजारी यही करता है। कभी पुजारी बोल सकता है ये सारा मेरा है सामान, ये थाली मेरी है, ये चम्मच मेरा है, गिलास बोलता है कभी नहीं। उसी प्रकार से कभी गोपियां नहीं समझती कि ये देव मेरा, ये श्री कृष्ण का है, ये पूजा के लिए। तो पूजा के लिए जैसे सजाना है कटोरी गिलास को अलग तरीके से सजाना होता है, गोपी का देह भी पूजा को उपकरण उसको अलग तरीके से सजाना है, सेवा करनी है। चाहे लिपस्टिक लगाओ वो सेवा है, काजल लगाओ वो सेवा, सिंदूर लगाओ वो सेवा, तिरस्कार करो तो सेवा, क्रोध करो तो सेवा, उपकरण है उनकी सेवा करो। जैसे तपा हुआ सोना होता है, तपा हुआ सोना में सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज सब चली जाती हैं, तो क्या राधा रानी तपे हुए सोने के समान है, नहीं। तपा हुआ सोने में से खराब चीज जाएगी, इसका मतलब खराब चीज कभी पहले थी। राधा रानी सहज प्रेम स्वरूप है, सहज प्रेम स्वरूप उनका स्वरूप ही है, सहज कृष्ण की सुख विधान का। तपा हुआ सोना हम हो सकते हैं कि हमारी इम्प्योरिटी कभी चली जाए तो हम तपा हुआ सोना हो जाए। राधा रानी तपा हुआ सोना नहीं है, वो नो कंटामिनेट। अरे भाई सच्चिदानंद विग्रह में बीच में कौन सी चीज आ जाएगी, तपाओगे तो किसी चीज में, सच्चिदानंद में विग्रह है। ये भगवान की रास लीला, दिव्य श्रृंगार लीला होती है, ये अप्राकृत पात्रों में होती है, अप्राकृत धाम में होती है, अप्राकृत मन बुद्धि व देह से होती है, अप्राकृत चिन्मय देह से होती है। चिन्मय पात्र कौन, चिन्मय पात्र कृष्ण राधा मंजरिया, इन चिन्मय पात्रों में चिन्मय लीला चिन्मय जगत में दिव्य जगत में होती है। अब कोई बोले कि ठीक है अब हमें आपकी उपासना थोड़ी समझ आई, अच्छा ये राधा कृष्णा है, ये अष्ट सखी हैं, तो आप मंजरी बनना चाहते हो, तो आप सखी क्यों नहीं बनना चाहते, वो तो कृष्ण का अनुसरण करती हैं, क्यों नहीं बनना चाहते सखी। सखी हम इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि श्री कृष्ण के चित्र रूपी दर्पण में श्री कृष्ण का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से कौन कैप्चर कर पाता है, किसका चित्र कैप्चर कर पाता है, केवल राधा का, ललिता विशाखा का नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो उनकी एक वृत्ति मात्र है, होल में से एक है, जैसे इतने सारे हैं ठीक है फूल है, इसमें से एक है, तो एक का स्वादन मिलेगा, ठीक है। परंतु राधा रानी जो दर्पण है उसमें श्री कृष्ण का पूर्ण रूप प्रतिबिंब जो है परिलक्षित होता है। अब जो चित्त है, चित्त के अंदर शीशे के अंदर अगर फोटो दिखती है तो क्या उसमें वास्तविकता है? फोटो शीशे के अंदर जो देख रहा है, समझ रहे हैं बातों को? ध्यान दीजिए, शीशे में जो प्रतिबिंब देख रहा है, छाया दिख रही है, क्या उसमें वास्तविकता है? छाया है ना। तो ये भी नहीं बोल सकते कि श्री कृष्ण की, राधा के जो चित्त है उसमें श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है, छाया है, वो नहीं है। श्री कृष्ण साक्षात है पूर्ण मधुर्य के साथ। तो श्री कृष्ण पूर्ण आस्वादन केवल राधा का चित्त कर सकता है, और राधा इतनी करुणामयी है कि जो आस्वादन वो करती हैं वो ललिता विशाखा की सखियों को प्राप्त नहीं होता। वो अपनी कृपा से, अपनी करुणा से अपनी सखी मंजरियों को वही आस्वादन दे देती हैं जो वो स्वयं करती हैं। इसलिए हम मंजरी बनना चाहते हैं और सखी नहीं, क्यों? सखियों को उस अनंत दिव्य श्रृंगार रस सिंधु का एक बिंदु मिलता है। और तो हमारी राधा रानी क्या है? करुणामयी है। तो वो दिव्य समुद्र माधुर्य रस सिंधु को पूर्ण रूप से सिंधु का भोग करके पूर्ण सिंधु ये मार्ग को दे देती है मंजरियों को। एक करोड़पति आदमी हो वो चाहे तो 100 रूपये भी दे सकता है दान किसी को, 1 रूपये भी, 1000 रूपये भी, और चाहे तो करोड़ का करोड़ दे दे। हमारी राधा क्या रानी क्या है? करोड़पति है। वो करोड़ वो पूरा दान दे देती है। दिव्य जगत में क्या है? 1 - 1 = 1। वो करोड़पति करोड़ देने के बाद भी करोड़पति ही रहता है। ये दिव्य जगत है, यहां पे 1 - 1 = 0 नहीं होता। प्रेम का क्या लक्षण है? जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो बांटा तो और बढ़ गया। यही श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति जो श्री कृष्ण को आनंद देती है, ये जो श्री कृष्ण के अंदर होती है तो उन्हें स्वरूपानंद मिलता है। और यही हलादनी शक्ति जो भक्तों के चित्त में जाती है और तो उससे जो आनंद मिलता है श्री कृष्ण को, उसे कहते हैं शक्ति स्वरूप आनंद। कृष्ण को आनंद इस जड़ जगत का कोई वस्तु व्यक्ति नहीं दे सकता, केवल हलादनी शक्ति ही देती है। राधा रानी ही आनंद देती है श्री कृष्ण को, केवल वही राधा रानी इस संसार के जीवों के भीतर प्रवेश करती है, उनके चित्त में, उनके चित्त को चिन्मय कर देती है। और इससे श्री कृष्ण की सेवा होती है, चिन्मय इंद्रियों से, चिन्मय चित्त से ही सेवा होती है भगवान की, और इससे आनंद मिलता है फिर श्री कृष्ण को। आई नेवर सॉ एन स्टार्टर्स मंदिर स्टार्ट। देखिए राधा कृष्ण की लीला में कभी स्त्री पुरुष का आरोप मत करिएगा, काम वासना का, ये दिव्य जगत की लीला है। जीव गोस्वामी ने कहा कि जो परमात्मावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, जो ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, वो क्या है? चंद्रमा की चांदनी, कृष्ण का कांति, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो चंद्रमा में ना जाके चंद्रमा की कांति में लीन होना चाहता है वही व्यक्ति जो है संसार के भोग वासनाओं से परे हो जाते हैं, इस संसार को भोगना नहीं चाहते। जो परमात्मावादी ब्रह्मवादी भी होते हैं वो भी संसार को कभी भी नहीं भोगना चाहते हैं। तो जो भक्त हैं वो तो बिल्कुल ही भोगना नहीं चाहेंगे, और जो भक्तों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण है वो क्या वो संसार की स्त्री पुरुष को भोगना चाहेंगे क्या? जब ब्रह्मवादी नहीं संसार को भोगना चाहते, भक्त नहीं भोगना चाहते, भक्तों के जो परम आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या वो संसार के भौतिक गंदे कलुषित इंद्रिय जनित देह व्यापार को क्या अपने भोग समझेंगे, क्या एंजॉयमेंट समझेंगे? काम और वासना, काम और प्रेम, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है काम और प्रेम में? काम जो है कीचड़, अंधकार, और प्रेम क्या है? परम उज्जवल सूरज। ठीक है, हमारी भाषा में जो हमें समझ आए काम और प्रेम में क्या भेद होता है? ये जो पंच भौतिक देह है, क्या होता है पंच भौतिक देह? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना ये देह, ध्यान दे के शब्द ये परिभाषाएं समझ आ जाएंगी, जीवन बदल जाएगा। ये पांच भौतिक देह जो कि अन्न और जल से संवर्धित होता है, ये देह जो है किससे ठीक रहता है? अन्न और जल से संवर्धित होता है, और मल और मूत्र जिसका परिणाम है। क्या परिणाम होगा इस शरीर का? मल, जो करो मल मूत्र होगा उसका, अंत मल मूत्र है इसका। ये पांच भौतिक देह जो कि जल और अन्न से संवर्धित होता है, और मल मूत्र जिसका परिणाम है, इससे सुख की जब हम अपेक्षा करते हैं, इसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो इसे काम कहते हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए? एक मल मूत्र का थैला है, जैसे मान लो आप लैट्रिन है, लैट्रिन के अंदर आप गए, हाथ मार के कुछ निकाला और एक पॉलिथिन में डाल दिया, ठीक है। पॉलिथिन को फटाफट बढ़िया सा रेमंड से कपड़े से सजाया, आरजीस का लिफाफा डाला, रख दिया, तो क्या वो मल मूत्र बदल जाएगा क्या? लैट्रिन निकाला, थैली में डाला, रेमंड का कपड़ा डाला, ऊपर आरजीस का बैग डाला, कितना बढ़िया हो गया। ये हमारा शरीर है सारा, मल मूत्र का थैला, एक मिलीमीटर की कवरिंग है जिसके लिए, वन मिलीमीटर बस। मैं तो फिर दो डाल दिए, आरसीस का और रेमंड्स का, मैं तो एक है, एक मिलीमीटर का अंदर पूरा वही है जो बताया, जो हाथ मार के निकालो अलग फॉर्म में है। इसमें आनंद मानना, इससे आनंद मिलेगा, इसके लिए काम ना करना, इसे काम कहते हैं। और ये भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सोचो ना, टट्टी पेशाब में जो आनंद मान ले, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? उससे बड़ा भ्रम क्या? इसको कोई आनंद मान ले तो इससे बड़ा भ्रम क्या है? और इसके लिए कार्य करें। तो आज के इस पावन दिन में हम अपनी प्राणेश्वरी से प्रार्थना करें, हे किशोरी जी, आप मेरी सारी ममता, हर प्रकार के व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति से हटा लें। दादा जी से क्या प्रार्थना करें? मेरी सारी ममता, मेरा सारा मोह, बोला तू तो पूरी ममता ही छोड़ चुके, यही तो करना है भक्ति को, करना क्या है वो भक्ति में, यही तो करना है। प्रार्थना क्या करें राधा से? मेरी सारी, थोड़ी ममता नहीं, सारी ममता, समस्त व्यक्तियों, वस्तुओं व परिस्थितियों से हटा के केवल अपने में लगा दो। मेरी सारी ममता अपने में, कृपा करके इस प्रेम की, इस प्रेम का दान देना, भीख मांग रही हूं, मेरी सारी ममता अपने में लगाना। राधा रानी, यही राधा अष्टमी बनेगी, नहीं तो कहां बनेगी राधा अष्टमी? मेरी सारी ममता अपने लगाना, समस्त व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, मैं विराम देना चाहेंगे। आप में से किसी भक्त का कुछ जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा शांति का मैं प्रयत्न करने की चेष्टा कर सकता हूं।